नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। कल कथा आई थी, उस राक्षस का संहार कर दिया और राजा के मित्र के पुत्र से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। सब आई बात। अब उसकी जो कन्या थी, जिसको वत्स प्री ने स्वीकार किया था, उसके बड़े श्रेष्ठ पुत्र हुए। इसका वंश बहुत श्रेष्ठ था। उसके 12 पुत्र हुए, सभी बड़े भाग्यशाली थे। सबसे बड़ा पुत्र था प्रांशु। वो प्रांशु तो हुआ राजा और शेष भाई सेवक के समान उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उस प्रांशु ने इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए, इतना दान दिया कि ब्राह्मण और दूसरे जितने लोग थे वो उस धन को ले जा नहीं सके, वहीं छोड़ दिया। इतना सारा कैसे ले जाए? भागवत में भी आता है कि मरुत नाम के राजा ने यज्ञ किया तो सारे पात्र सोने के। यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्राह्मणों से कहा, ये सब आप ले जाओ, कि हमसे तो चलता ही नहीं। ऐसे यहां हुआ, वो धन था वो जमीन में गड़ा रह गया, इसलिए इस जमीन का नाम, पृथ्वी का नाम वसुंधरा हुआ। वसुंधरा, वसु माने धन, उसको धरा माने धारण करने वाली, वसुंधरा। प्रजा से इतना प्रेम करते थे कि उनके खजाने में जो भी कोई धन आता वो सब यज्ञ में लगा देते थे। उनके द्वारा जो लाखों यज्ञ संपन्न हुए, ये तो कहने की बात है, वास्तव में उनकी संख्या नहीं थी। ऐसे श्रेष्ठ राजा के श्रेष्ठ पुत्र था और ऐसा ही उसका पौत्र था। पौत्र का नाम था खनित्र। अब इसका चरित्र बहुत अच्छा चरित्र है। ये सब वैवस्वत मनु की वंशावली में आने वाले राजा हैं। एक तो वे बड़े शूरवीर थे, बड़े सत्यवादी थे, शांत प्रकृति के थे, बड़े सहिष्णु थे, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे, स्वधर्म परायण थे। बड़े बूढ़े जो पुरुष होते उनकी सेवा की वृत्ति उनमें रहती थी, खूब शास्त्रों का अभ्यास किया, बड़े विनयशील, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे और डींग नहीं मारते थे। मैं ऐसा और ऐसा है वैसा है, डींग नहीं हाँकते थे। वे सब लोगों के बड़े प्रिय थे। वे रात दिन अपनी प्रजा के बीच में रहते हुए यही बात कहते थे कि हे प्रजाजनों, एक तो प्राणियों को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए, दूसरे पर स्नेह रखो, सब जीवों का भला हो ऐसी भावना बने, ऐसा स्वभाव बनाओ कि कोई हमसे भयभीत न हो, किसी के भी कोई आदि व्याधि मानसिक व्यथा कुछ न हो, सब प्राणियों के साथ मित्रता का भाव रखो, ब्राह्मणों का आदर करो, सब में परस्पर प्रेम से रहो, सभी वर्णों की उन्नति हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, सबकी उन्नति हो, सबका भला हो, सब भूतों में एक परमात्मा का भाव रखो। जैसे तुम लोग अपने पुत्रों का सदा हित चाहते हो, ऐसे ही सब प्राणियों का हित भाव रखो। कोई किसी का अपराध करता है तो उसका फल बड़ा बुरा होता है, इसलिए अपने द्वारा किसी का भी अपराध होता उससे बच लो, कभी किसी के अपराधी मत बनो। यह विचार करके पवित्र भाव से रहो। इस लोक में आप पाप इकट्ठा नहीं करोगे तो आगे आपको उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। मैं तो ये चाहता हूं कि आज जो मुझसे स्नेह रखता है वो सभी प्राणियों के साथ वैसा स्नेह रखे, और इससे भी आगे बात कहता हूं कि जो मुझसे प्रेम रखता है उसका भी कल्याण हो, और माम द्वेष्टि लोकेस्मिन, जो मेरे से द्वेष रखता हो उसका भी कल्याण हो। हमने एक बार एक मंगते से बहुत बढ़िया बात सुनी। ये मंगते हैं, मांगते रहते हैं, वो अपने हाथ में कटोरा लिए हुए, कोई रेलगाड़ियों में फिरते हैं, कोई कहां, बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा भाई देव उसका भी भला और नहीं देव उसका भी भला, कितनी अच्छी बात है। तो वो मंगता भाव उसने चाहे किस भाव से कहा हो, पर बात उसकी बड़ी अच्छी है कि देवे उसका भी भला और नहीं देवे उसका भी भला। राजा के कहा यश समान द्वेष्टि लोकेस्मिन सोपि भद्राणी पश्यतु, जो आदमी मेरे से द्वेष रखता है भगवान उसका भी कल्याण करे। ये खनित्र सबसे बड़े राजा थे और सब भाइयों से कितना प्रेम करेंगे, ये तो आप प्रजा से इतना प्रेम करते हैं तो भाइयों से भी बड़ा प्रेम है। पूर्व दिशा का राज्य अपने छोटे भाई शौरी को दिया, दक्षिण दिशा का राज्य उन्होंने उदावसु नाम के भाई को दिया, पश्चिम दिशा का राज्य सुनय नाम के छोटे भाई को दिया, और उत्तर का राज्य उसने अपने सबसे छोटे भाई महारथ को दिया। और चारों भाइयों के यहां अलग अलग मंत्री रख दिए, अलग अलग पुरोहित रख दिए, और सबके ऊपर ये खनित्र थे। चारों भाइयों तथा समस्त प्रजा पर उनका बड़ा स्नेह था खनित्र पर। यह तो एक बात हुई। इधर इसका जो छोटा भाई दो नंबर का भाई था जिसको पूर्व की तरफ का राज्य दिया था, उसके यहां एक मंत्री रहता था, उस मंत्री का नाम था विश्ववेदी, माने विश्व को जानने वाला, पर जानता वानता नहीं था, वो नाम था बस उसका। उस दिन एक दिन उसने एक दिन अपने राजा सौरी से कहा,
महाराज आपको कुछ मैं बात कहना चाहता हूं, यदि आपको बुरी लगे तो आप यहीं खत्म कर देना। एक बात सुनो कि जिसके हाथ में सारी पृथ्वी का राज्य होता है उसके समान संसार में कोई सुखी नहीं होता, और जिसके हाथ में सारा राज्य रहता है सब उसके अधीन रहते हैं, और वो तो राजा होता ही है, फिर एक और बात है कि उसके बेटे पोते भी उसी का ही राज्य संभालते हैं, फिर दूसरा आदमी हक नहीं लगा सकता। तो एक बात ये कहना चाहता हूं, आपका बड़ा भाई जरूर है खनित्र, आप ऐसा कोई उपाय करें, मैं भी आपके साथ में रहूंगा, कोई ऐसा उपाय करो कि इस खनित्र को मार दो और खनित्र का राज्य आप ले लो, फिर इतने बड़े राजा बन जाने के बाद सब कुछ आपका ही हो जाएगा। हम आपको यहां पूरा लाभ पहुंचाएंगे, पर हां एक बात है, हम केवल यहां लौकिक लौकिक लाभ ही पहुंचाएंगे, परलोक में हमारा कुछ नहीं चलेगा। तो सौरी ने फटकारते हुए कहा, मंत्री जी आपको शर्म नहीं आती है? मेरे बड़े भाई राजा हैं और हम लोगों के साथ कितना आत्मीय व्यवहार करते हैं, पुत्रों के समान वो हमसे स्नेह रखते हैं, और आप उनको मारने की बात कहते हैं, कितनी घिनौनी आपकी चाल है, ऐसे राज्य को लेकर क्या करेंगे? विश्ववेदी बड़ा चालाक, उसने कहा कि देखिए यदि आप मारने में संकोच करते हैं तो आप जैसे तैसे उनका राज्य ले लीजिए, और राज्य लेने के बाद फिर आप उनकी सेवा करना, खूब आदर करना, आपके पास खूब धन तो आएगा ही, उस धन संपत्ति के द्वारा बड़े भाई की पूजा करते रहना। देखो राज्य की प्राप्ति में कोई बड़ा छोटा भाई वगैरह कुछ नहीं होता है, वहां तो राजनीति चलती है, वहां राजपुत्र नहीं चलता है। ऐसी नीति बनाओ सारा राज्य सारा धन आपको मिल जाए। सौरी बार बार मना करते रहे, परंतु जब आदमी कुसंग में पड़ता है और उसके अंदर कोई न कोई भीतर में छिपी हुई वासना होती है, तो वो कुसंग और वासना ही दोनों का मिलन होते ही आदमी का तत्काल स्वभाव बदल जाता है, खराब हो जाता है। रोज 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 ऐसी उल्टी पुल्टी बातें सुनते 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 उस राजा सौरी के मन में ये भावना जाग गई, और जिस बात के लिए बार बार विश्ववेदी को फटकारते थे वही बात उनको अच्छी लगने लग गई। ये कुसंग का प्रभाव है। अंत में सौरी ने कहा, अच्छी बात है, ये मैंने प्रतिज्ञा की, वो राज्य हड़प लेंगे। फिर कहा कि देखो एक काम तो है, अभी आपके तीन भाई और हैं, आप कहो तो उनको जाकर मैं थोड़ा बहका दूं, आपके साथ हो जाए। हाँ करो। ऐसे करके उसने साम दान आदि के द्वारा उनके पुरोहितों को, उनके मंत्रियों को, उनके सब लोगों को उसने बहका बुकू करके, फुसला फुसलू करके, और सबसे हामी भरा ली कि ठीक है, तब कहा कि भाई ये खनित्र राजा है, ये बड़ा धर्मात्मा राजा है, यदि किसी प्रकार इस पर आक्रमण वगैरह करेंगे तब तो प्रजा हमारे साथ विद्रोह कर लेगी। अपन ऐसा करो कि यज्ञ करो और उस यज्ञ में आभिचारिक अनुष्ठान करो। आभिचारिक क्या होता है? अगले को मारने का अनुष्ठान। तो कहा ये बात तो बहुत अच्छा है, न तो किसी को पता चलेगा और न कोई अपने पर दोषारोपण करेगा। अपन भी कह देंगे हां साहब मर गए, हां साहब मर गए, तो ये बात तो बहुत अच्छी सोची। सबने मिलकर के यज्ञ किया, आभिचारिक यज्ञ। उस यज्ञ के अंदर चार कृत्या पैदा हुई, ऐसी भयंकर विकराल स्त्रियां, बाल उनके खुले हुए, दांत उनके बाहर आए हुए, बड़ा विकराल आ करते करते वो प्रकट हुई। उन सबके हाथों में बड़े त्रिशूल, चार कृत्या हुई चार त्रिशूल सबके हाथों में। क्या करना है? तो कहा हे कृत्या हो, राजा खनित्र के पास जाकर आप अपनी इस यज्ञ की फलश्रुति को प्रदान कराओ। इस यज्ञ का जिस कारण के हमने फल लेने के लिए किया वो काम आप करो। तो वो कृत्याएं भयानक रूप वाली त्रिशूल लिए हुए खनित्र के पास आई। खनित्र बड़े संत पुरुष थे, उनका हृदय बड़ा पवित्र था, और जिसके हृदय में पवित्रता होती है उसके पास ये अपवित्रता आ ही नहीं सकती है। तो उनके पवित्रता के प्रभाव से, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में किसी का भी अहित नहीं किया और किसी का अहित नहीं चाहा, इसलिए वो उन पर प्रभाव नहीं पड़ा। वो कृत्या आई और जो ही उनके पास आया किया, मुंह फोक खोला, त्यों ही वो सब के सब परास्त हो गई और कृत्या वहां से लौटी। अब इसमें एक बहुत बड़ी भारी कमजोरी ये होती है कि कृत्या को जिन लोगों ने पैदा किया जिस काम के लिए, वो काम यदि नहीं हो पाता है तो वापस पैदा करने वालों को जाके वो मारती है। तो वहां से सीधी वो गई और जो पुरोहित वहां थे यज्ञ आदि कर करके आगे बढ़ने वालों सबको उसने भस्म कर दिया। और इसमें जो विश्ववेदी नाम का था ना, उसको भी जाकर उन्होंने भस्म कर दिया। इस घटना की जानकारी खनित्र को मिली, बड़ा आश्चर्य में हो गया, ये क्या हो गया? मेरे चारों भाइयों के चारों पुरोहित नष्ट हो गए, मंत्री नष्ट हो गए, मेरे भाई तो नहीं मरे पर ये सब नष्ट हो गए। बड़ा उनको दुख हुआ कि एक साथ नष्ट हुए, एक ही दिन नष्ट हुए, क्या बात है? पता था नहीं बेचारे। एक दिन यही घूमते घामते वशिष्ठ ऋषि आए। वशिष्ठ ऋषि आए तो उनकी बड़ी पूजा करके उनसे वशिष्ठ ऋषि ने पूछा, क्यों राजन सब ठीक हो ना? प्राय हमारी संस्कृति में एक नियम है, कोई कोई आपस में मिलते हैं तो सब ठीक है ना, कुशल है ना, ये पूछने का तो हमारे यहां रिवाज है, प्रथा है, सभ्यता है। एक गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग ये हमारे यहां नहीं चलता है। हमारे यहां क्यों भाई, कुशल क्षेम है? पहले तो भगवान का नाम जयराम जी की, जयराम जी की बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय माता जी की बोलते हैं। गृहस्थ में साधु संत मिलते हैं तो उनके अलग अलग अभिवादन, राम महाराज ये रामष्टमियों में अभिवादन, कबीर पंथियों में सत्साहेब, मतलब वो मालिक है वो सत्य है सत्साहेब, दादू समाज में सत्यराम अलग 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 है अभिवादन। नाथ संप्रदाय में आदेश, तो पूछा वशिष्ठ जी ने पूछा क्यों भाई कुशलक्षेम तुम्हारे सब ठीक है ना, तो रोने लग गया। अरे रोता क्यों है, तेरे जैसा पुण्यात्मा राजा रोता है कि क्या करूं मेरे भाइयों के चार पुरोहित कृत्याओं के द्वारा मर गए, ऐसा सुनने में आया, इसलिए बड़ा दुख हो रहा है कि अच्छे पुरोहित थे, मंत्री अच्छे थे, सब मर गए। आपको मालूम है महाराज? अरे सब मालूम है। तो क्यों मरे महाराज? कि देखो कोई कृत्या मारती नहीं, कोई किसी को कष्ट देता नहीं, वो सब अपने पाप से जड़ करके मर गए। उनके पाप से, पाप का फल तो मनुष्य शरीर में मिलता ही नहीं, कह नहीं उनके पाप तो उनको खा गए। सारी घटनाएं बताई, सब घटना सुनी कि अच्छा मुझे मारने के लिए कर रहे थे। अब खनित्र ने कहा हे महाराज, इस संसार में मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली, मेरे जैसा दुष्ट कौन है? धिक्कार है मुझे, मैं ऐसा हुआ जिनके कारण चार ब्राह्मण मारे गए? केवल एक राज्य के पीछे यदि मैं राज्य का मालिक नहीं बनता तो ये दुर्दशा क्यों होती मेरे भाइयों के राज्य की? ऐसा क्यों होता? मेरे राज्य को धिक्कार, मेरे जन्म को धिक्कार, मेरे कारण से बेचारे ब्राह्मण मारे गए। वे पुरोहित तो अपने स्वामी हैं, मेरे भाइयों का कार्य कर रहे थे, बड़ी उनकी मृत्यु हो गई, मैं बहुत दुखी हूं, क्या करूं, उनके नाश का कारण बन गया मैं। महर्षि ने कहा कि राजन धैर्य रखो, आने वाले समय की प्रतीक्षा करो। तुम अपने पर क्यों व्यर्थ में दोष लेते हो? वो कहता अब मैं राज्य में नहीं रहूंगा, इधर तो मेरी आयु भी हो रही है और इधर मुझे इस राज्य से वैराग्य हो गया है। अपने क्षुप नाम का राजा लड़का था, उसको राजा बना दिया और उसकी तीन पत्नियां थी, तीनों को लेकर वो जंगल में चला गया और वहां जाकर वो खूब तपस्या करने लगा। अब उसके सामने दो बात थी, एक तो राजा का काम था, राजा होने का जीवन भी देखा और एक एकदम तपस्वी जीवन देखा। उसको इस तपस्वी जीवन में बड़ा आनंद मिला कि बाहर से तो मेरे पास सुख सुविधा नहीं पर अंदर बड़ी शांति है, और यदि अंदर में शांति है तो बाहर चाहे कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने अपने शरीर को दुर्बल कर लिया, सब इंद्रियों को रोका और बड़े प्रसन्नता से भगवत ध्यान करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और अंत में उनको अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई, अक्षय पुण्य लोकों में गए। इसी प्रकार उनकी पत्नियां गईं। देखो कौशल्य जी, यह मैंने प्रसंग इसलिए सुनाया है कि जो राजा खनित्र का चरित्र सुनता है, जो व्यक्ति राजा खनित्र का चरित्र सुनता है उस आदमी का सारा पाप नष्ट हो जाता है। अब तुम इसी के खनित्र के वंश के विषय में आगे सुनो।